क्वचित शीता पदजात वर्ष प्रतिक्रियन करते मनुष्य नाश्ते, कभी कभी शीत अधिक जाड़ा पड़ता है या घाम या भी वर्षा, तो इसका प्रति निवारण करना चाहता है लेकिन गरीब होने से निवारण नहीं कर पाता, तब दूसरे के धन को लेने की कोशिश करता है। ये वन नहीं संसार में क्वचित मिथो विपरण जबकि दिव्य समीक्षक उपदीत साठ, कभी किसी से व्यवहार करता है, लेन देन करता है, खरीद बिक्री करता है, तो कौड़ी भर धन भी इधर से उधर हुआ बस केस मुकदमा थम जाता है। आपस में व्यवहार करता है और खास करके विवाह का, मान लीजिए हमारा पुत्र है, किसी की पुत्री है, इस तरह से विवाह हो रहा है, तो विवाह करते समय वो ऐसा लगता है कि इनका पूरा हृदय मेल कर गया है, एक दूसरे का स्वागत करते हैं, अच्छा से बोलते हैं, लेकिन लेन देन में थोड़ी सी गड़बड़ हो तो फिर शत्रु हो जाते हैं। अगर लड़के आ गए ससुराल में तो लड़की वाले ने दहेज अच्छा से नहीं दिया तो लड़की को विदा भी नहीं करता, नहीं विदा करे। उसके भाई आते हैं, पिताजी आते हैं कि विदा कर दो, नहीं तुमने वादा करके दिया क्यों नहीं, दहेज नहीं है, दिया वो दिया वो दिया, तो आपस में विवाह करता है, व्यवहार करता है, करते समय तो बड़ा प्रेम रहता है लेकिन बाद में लड़ाई हो जाती। क्वचित क्वचित क्षण धनस्त तस्में सद्य संस्थान बिहार रहे, कभी कभी इतना धन कम हो जाता है इस जंगल में, इस बंगले का धन इतना कम हो जाता है कि सज्जा तक नहीं रहती है, पलंग नहीं, बिछौना नहीं, आसन नहीं, कुर्सी आदि नहीं, और स्थान कोई घर द्वार नहीं, बिहार ही न कोई भी खान, बिहार का सामान नहीं रह जाता है, मतलब ये मोटरसाइकिल भी नहीं, कार नहीं, साइकिल नहीं, कुछ नहीं, इसको बिहार कहा था, घूमने फिरने का सामान भी नहीं रहता, ये तो होना ही है। आज हम बहुत धनी हैं, कल हो सकता है कि गरीब हो जाएंगे, या आज जो गरीब है हो सकता है धनी हो जाए, भगवान के इच्छा से कुछ भी हो सकता है, वो जानते हैं हमारे कर्मों का हिसाब। इस तरह तनाचल प्रभाव प्रतिलब्ध मानता है, उसमें दूसरे से मांगता है और नहीं मिलता है तो अलब्ध काम बड़ा दुखी रहता है, मांगने पर भी नहीं मिलता है इस बन में, तो पारक दृष्टि लगते हो मानू तब वो चोरी करना चाहता है, पारक की दृष्टि दूसरे के धन की दृष्टि रहती है, उसको चोरी करना चाहता है, लेना चाहता है, तो फिर इसका अपमान होता है, मारा जाता है या जेल में बंद किया जाता है। अन्य वित्त व्यक्तिसंग वृद्ध गैरा निबंध विधान निपर्च, फिर उसी को कह रहे हैं कि एक दूसरे के धन में आसक्त रहता है, वैर करता है तो परस्पर विवाह करता है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि परस्पर दो शत्रुओं में भी विवाह होता है, पहले से आपस में झगड़ा है लेकिन विवाह होता है लड़का लड़की का, और उस समय वो कहते हैं हमको दूसरा लड़ा रहा था, वास्तव में हम लोग तो एक ही है, विवाह हो जाता है फिर झगड़ा होता है। तो इस प्रकार इस वन में या वनिक समुदाय विविध क्लेश भोगता है, धन की बाधा होती है, रोग दुख भूख प्यास आदि से विपन्न होता है और चलता रहता है, ताजता विपन्न चौथा प्रपत्र बिहार जातम परगृह साथ, तो वनिक समुदाय वन में जंगल में चलता रहता है, चलता रहता है, और जो यहां गिर जाता है उसको छोड़ देता है, और कोई नया आकर के दल में शामिल होता है तो उसको ले लेता है, चलता रहता है, जो गिरा वो गिर गया, जैसे माता पिता मर गए और इस तरह से वो विदा हो गए, माता पिता छूट दे जाते हैं, चाहे कोई बच्चा भी मर जाता है तो मर गया, बस मर गया, और नया आया तो उसको शामिल किया, मतलब जन्म लिया, तो दो तरह से नया शामिल होते हैं, विवाह द्वारा और जन्म द्वारा। इस वनिक समुदाय में जातम जातम परिगृह, तो जन्म लेता है या विवाह के द्वारा आ जाती है, आ जाता है तो उसको ग्रहण करता जाता है, ये हमारा परिवार है, हमारा परिवार है, जो मरता गया उसको पांचतान विपन्न सहित पत्र दिया है, जो जहां मरा वहीं छोड़ दिया, ज्यादा से ज्यादा साल में एक बार श्राद्ध कर लेगा और क्या, वो तो छूटा, उन्हें छोड़ेगा तो करेगा क्या, उल्लास लेकर ढोएगा थोड़े, वो छूटते जाते हैं छूटते जाते हैं, नया जन्म लेते जाते हैं। इस तरह से ये वणिक समुदाय चलता रहा। आरोपते अब व्यापन कश्चित अत्र बिना धन उपार होते थी योग। लेकिन आश्चर्य है वे रजर हो गए, आज तक यह दुनिया इसी तरह से दुख भोग रहा है संसार में, लेकिन उस योग पर अभी तक ये नहीं आया। उस योग को जो इस बन में सुन है उस उपाय में अभी तक नहीं आया जो उपाय इसको इस मार्ग के पार पहुंचा देता है, मतलब तो भक्ति योग अभी भी नहीं आया, अभी भी माला नहीं उठाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। अब दे ये कह रहा है जब भरत जी, आज तक अभी भी न कश्चित कोई भी है कि अधोनो पारम योगम न उतरे थी। इस मार्ग के इस भाव के पार लगाने वाले योग को आज तक नहीं स्वीकार किया। हरे कृष्णा। वो संतुष्ट है, भटक रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस पार जाने की चिंता ही नहीं। इसी से भरतों का वर्णन किया जा रहा है कि हमको पता लग जाए कि हम जंगल में फंसे हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं नहीं, हम जंगल में कहाँ हैं। इसी रूम में बैठे हैं तो हम सोचते हैं जंगल है ही नहीं। लेकिन याद रखिए कि आप भेड़िए और सियार के बीच में है, अजगर ग्रस रहा है, पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा, दवाजू में झुलसना पड़ेगा। इसी रूम में बैठा हुआ आदमी भी चिंता से जलता रहता है, है ना। बाहर चमड़े को थोड़ा सा सुख देती है हवा, लेकिन मन तो जलता रहता है संसार की चिंता का। उस हवा से फायदा क्या हुआ, जलते रहो। तो ये बड़ा शोक से बोल रहे हैं, दुख से बोल रहे हैं जब भरत जी हे लोग, तुमको तो मार्ग मिल गया, तुम तो पार हो जाओगे, लेकिन ये वणिक समुदाय अब तो अपनी न आवर्तक आवर्तक अब तक आवर्तन कर रहा भूल रहे से संसार में, लेकिन भक्ति जोर पर नहीं आया। एक खेद की बात, संसार में जीना खाना घूमना विवाह शादी करना ठीक है, करें नहीं, जब बड़े खो ही गए हैं तो अब तो करना ही है, लेकिन इस योग पर भी तो आना चाहिए, इस भक्ति योग को ग्रहण करना चाहिए। दुख की बात है, और जब भरत जी प्रचार के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं, प्रचार करो प्रचार करो, इसे जंगल में ही प्रचार करना है, इसी में योग है, भक्ति योग है, उसको कर लो। मनुष्य में मृजुद्ध गजंगा मनुष्य सर्व भूगद्ध बंगा मृदु शरीर मृत्यु ब्रजंती जन्मस्तंभगत दौर दिया। तो बड़े बड़े राजा हुए, राजा से कहानी कही जा रही, इसलिए कारण हे राजन, इस संसार में बहुत बड़े बड़े राजा हुए, निर्जित दिग्गजेंद्रा भी हुए, दिशाओं के हाथियों को जीत लिया, उनके पूरा ब्रह्मांड भी जीत लिया, जैसे हिरण्यकश्यप लेकिन पृथ्वी को नहीं पूरे ब्रह्मांड को जीते थे, लेकिन इस पृथ्वी में यह बुद्धि करते थे ममई की और बद्ध वैराज झगड़ा के कलह किए और पृथ्वी पर ही अपने शरीर छोड़कर सो गए, पृथ्वी में नष्ट हो गए। मृदे शरीर जो बने शरीर सो गए मर गए, इतना साहस का इतनी बड़ी कमाई किए, संसार विजय किए, लेकिन भक्ति नहीं किए, इतना दुर्लभ है। इसीलिए मैं तुमको बार बार वीर कह रहा हूं, तुम वीर हो रहे हो, वास्तव तुम जीत चुके हो संसार, और जो दिशाओं को जीते संसार को जीते वो तो कुछ भी नहीं। तो इस मार्ग को कौन जीतते हैं, भक्ति योग में कौन आते हैं, जो नष्ट दंड और व्रत वायर अभियान, जो किसी से वायर नहीं करता है, किसी को सताता नहीं है, दंड नहीं होता है, वही इस भक्ति योग में आता है। अच्छा, अब फिर सिंहावलोकन से वर्णन कर रहे हैं, एक बार भरतों का वर्णन किया और कारण कोई आ नहीं रहा है इस भक्ति योग में, खेद करके प्रेरित करके फिर सिंह अवलोकन करते हैं। सिंह अवलोकन का अर्थ होता है, सिंह जब जंगल में चलता है
तो धीरे धीरे पैर बढ़ाता है और देखता जाता है पीछे भी। बहुत मनस्वी होता है, जंगल का राजा है लेकिन उसका चारों ओर से खतरा रहता है, इसलिए बहुत सावधानी से चलता है। आगे भी देखता है और रुक करके पीछे देखता है, बगल में देखता है। इसको सिंहावर लोक कहते हैं संस्कृत, सिंह का वो लोक। तो जब भरत जी वर्णन किए और फिर पीछे देख करके वर्णन कर रहे हैं, जिसका वर्णन किए तो उसी में से कुछ छूटी हुई बातों का वर्णन कर रहे हैं। सिंह सिंह कहते हैं कि सिंह लोक से वर्णन कर रहे हैं। प्रसव ज्योति क्वापि लता भुजाश्रय पदाश्रयान अव्यक्त पदा द्विजस इन्हा। कभी कभी जब वर्णन किसी लता के शाखाओं को पकड़ करके बड़ा आनंद का अनुभव करता है, जंगल में चलता है चलता है, देखता है बहुत सुंदर लता है, तो लता को पकड़ करके और सुख का अनुभव करता है। और उस लता पर बैठे हुए छोटे छोटे पक्षियों के अव्यक्त स्वर को सुनता रहता है। लता के आश्रय में बैठे हुए पक्षी और बहुत मधुर बोलते हैं, अव्यक्त मतलब पूरा पूरा नहीं बोल पाते हैं, बहुत मुश्किल से पापा मम्मी कहते हैं, उसको सुनता रहता है। तो लता में कहीं कहीं फंस जाता है, लता का आश्रय लेता है। लता एक अर्थ है यहां अपनी स्त्री। कभी कभी वह अपनी स्त्री का आलिंगन करके अपने को बहुत सुखी मानता है और सोचता है कहां दुनिया में दुख है, केवल सुख ही सुख है। लता भुजाश्रय, खास करके स्त्री की भुजा जब उसके कंठ में आती है तो उस समय तो अभी ब्रह्मानंद से भी कटकोटि गुना सुख पाता है, उस समय रहता। और उसी लता से उत्पन्न, उस लता से उत्पन्न, उसी स्त्री से उत्पन्न एक दो बच्चे हैं और वे अव्यक्त बोली बोलते, पूरे साफ नहीं बोलते, स्खलित अक्षर में बोलते, तो उसमें भी कान लगाया रहता है उसको सुनता रहता है। अपना जन्मा हुआ बेटा यदि पिता श्री कहे मतलब आप तो ये पापा और डैडी कहने लगे तो इसमें कोई रस यहां नहीं, लेकिन फिर भी अपने जन्मा हुआ यदि इस तरह संबोधन करे तो क्यों नहीं आदमी उसको सुनेगा, सुनना चाहेगा तो सुनता रहता। और क्वचित कदाचित हलचक उपस्थ सं सक्षम विभक्त बकंक वित्रे, मतलब इस जगत में वर्णों का समुदाय है, कभी कभी डरता है सिंहों के समुदाय से, देखता है जंगल में सिंह आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सिंह, छोटे छोटे सिंह, तो डर जाता है और भागता है। भाग करके किसकी शरण लेता है, बकुला गिद्ध और कंक की शरण लेता है। बताइए सिंह तो भय से कोई बकुला की शरण में बच सकता है, बकुला उसको बचा सकता है, बक बंगला कहते। तो हरि चक्र, हरि मतलब सिंह है और यहां हरि चक्र का अर्थ है भगवान विष्णु के काल चक्र से डरता है। कभी कभी दुनिया जब कैलेंडर देखता है अपने जन्म दिन को सोचता है, अब तुम्हें 65 वर्ष का हो गया, 55 का हो गया, 70 का हो गया, तो अब तो मुझे शरण लेनी चाहिए, परलोक के लिए कुछ करना चाहिए। काल से डरा काल चक्र से, तो काल चक्र जिसका आयुध है, जो चक्र चला रहा है उसकी शरण लेगा तब बचेगा ना, वो छोड़ देगा नहीं काटेगा। लेकिन जिसका काल चक्र है भगवान विष्णु की शरण न लेकर तो यह गीध गीध कौक और बटेर की शरण लेता है। तो कभी कभी लोग संसार में देखते मर जाऊंगा, परलोक के लिए कुछ करना चाहिए करना चाहिए, तब जा करके गिद्धों की शरण ले लेता है। वैष्णवों के अलावा जो भी साधु महात्मा है सब गिद्ध है, गिद्ध कौक बटेर। और सिंहों का समुदाय जो है छोटा छोटा काल है, तो बहुत बड़ा जो सिंह है वो द्वीपरार्ध है उससे छोटा बड़ा सिंह कल्प है या इससे छोटा सिंह युग है, उसमें भी कोई वर्ष है और 6 महीना आयन है पक्ष है, तो दिखता है कि ये तो हमारा जीवन कट रहा है कट रहा है कट रहा है, तो शरण लेने के लिए भागता है। लेकिन यह बेवकूफ है, शरण किसके लेता है, गिद्ध की। गिद्ध सिंह क्या करने से बचाएगा बताइए,
बल्कि अगर वो सोने लगेगा तो घी भी इसको खाना चालू कर देगा। वो खुश होगा, वो खुश होगा कि सिंह इसको मार दे, जो बचेगा हड्डी उड्डी थोड़ा मांस रहेगा तो मैं ही खाऊंगा। बहुत सख्त बात कही जा रही है और इसकी व्याख्या तो अभी दो हड्डी में करूंगा, आएगी व्याख्या। वैष्णव गुरु को छोड़कर के जब हम दूसरे की शरण लेते हैं तो उनको यहां कौनक बक और गिद्ध कहा गया है। दूसरे की शरण लेता है, बिना भगवान की शरण के कोई पार नहीं हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि गुरु की शरण लो और भगवान का तो चर्चा भी नहीं करते हैं, यही गिद्ध कौनक बटेर है, वो कभी पार नहीं करेंगे। सिंह से क्या बचाएंगे, सिंह से वो बचाएगा जब सिंह से बलवान की शरण ली जाएगी। बिना भगवान की शरण के हम पार नहीं हो सकते हैं। मानव ये प्रपद्यंते माया नेता अंतरंगे, हम लोग तो शरण लेते हैं गुरु, गुरु की शरण नहीं लेते हैं, हम लोग शरण भगवान के लिए नहीं वास्तव में भाया गुरु, गुरु के द्वारा वास्तव में हम हरे की शरण ले रहे हैं। गुरु की शरण नहीं ली जाती, गुरु शरण सिखाता है कि शरण लो कृष्ण की, उसके द्वारा हम शरण लेते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु की शरण ली और यही तेरी रास्ता बंद हो गया गुरु तक, फिर हरि तक जाने का कोई दरवाजा खुला नहीं। गुरु 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 ये सारी दुनिया में इस तरह कौक गिद्ध बटेर भरे कर रहे, और सोचते हैं कि अब खाए कमाए अब चौथा पर में जरा शरण लेनी चाहिए, तो शरण ही लेना है तो गिद्ध की शरण क्यों लेंगे, भगवान की शरण लेनी चाहिए। इस तरह सिंह के झुंड से डर करके गिद्ध की शरण लेता है और तैर वंचित है, और जब गिद्ध बटेर और बकरों की शरण लेता है तो उनके द्वारा एक ठगा जाता है, ठगा जाता है, बोलता है अरे ये तो केवल पैसा लेने के फेर में है और हमारा कुछ नहीं किए और उनका खान पान भी शुद्ध नहीं है, सब मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, प्याज लहसुन खा रहे हैं। तो ये जब धोखा देते हैं तब फिर हंसों की शरण लेता है, हंस मतलब ब्राह्मण या वैष्णव, तो ये फिर वैष्णवों की शरण में आता है। उधर किसी संस्था में जब ठगा जाता है तब तो इस्कान में आता है, हंसों की शरण लेता है। लेकिन हंसों का आचरण उसको अच्छा नहीं लगता है, ये चार बजे भोर में उठना और इतना शुद्ध रहना, इतना बिगड़ चुका है कि हंसों का आचरण और उचरण अच्छा नहीं लगता है, बहुत रिस्ट्रिक्शन है, ये मत खाओ वो मत खाओ, जब जाओ कम से ये करो, पर साफ सुथरा रहना इसका स्वभाव नहीं है, इसलिए हंसे का स्वभाव इसे अच्छा नहीं लगता है तो फिर बानरों में चला जाता फिर बानर में चला जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस काम छोड़कर बानरों में चले जाते हैं, बहुत लोग। बानर मतलब वह आदमी जो केवल स्त्री आदमी असक्त रहता है, बस बानरों का स्वभाव है। बानरी जो होती है बानर की ओर देखा करती है और बानरी बानर की ओर, हमने कहीं कहा था हम देखे रोया और रिया, रोया देखे हमरा और बस देखते रहते हैं, देखने से क्या होगा, देखते रहते हैं, ये बानर का स्वभाव है, देखते हैं और सैकड़ों बार संग करते हैं, ये बानर का स्वभाव। तो देखता है कि यहां तो रिस्ट्रिक्शन है, नो इलिसिट सेक्स, नो नीटिटिंग, तो सोचता है इसे अच्छे हैं बानर, नहीं चलेंगे बानर में रहे, जहां कोई भी प्रतिरोध नहीं है, स्त्री संगादी का खान पान का कोई प्रतिरोध नहीं है और स्त्री और पुत्र में मन मनता है, कमा रहे हैं खा रहे हैं, इस डाली से उस डाली पर, इस काम से इस काम पर, इस शहर से इस शहर में, बस यही काम, और परस्पर एक दूसरे का मुंह देखने में इतने आसक्त रहते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि एक दिन हमको मरना है। इस संसार में मनुष्य स्त्री का मुख देखने में इतना आसक्त हो जाता है कि अपने मरण को भी भूल जाता है, एक दिन मरना है। परस्पर दिक्षु विस्मृता अवधि चीनी का, परस्पर के उद्भिक्षु से उद मतलब खूब आंख भर कर देखना, और विस्मृत अवधि अपना मरणावधि भी भूल जाता है।
तज्जा तेरासी ने सुगुण रूप तुम्हें इसकी व्याख्या में कर दिया कि बानर जाति का रास क्या है, रस में केवल आनंद का खेल, उसका आनंद का खेल है बानरी की ओर देखना और उसके साथ सहन करना, यही इसका रास है और इसी रास में उसी रास विहार में लगा रहता। ब्रह्म सदनशन सुखदार वत्सल ब्रह्मशन मतलब पेड़ की शाखाओं पर घूमता रहता है, बानर को देखे हम कभी बैठता नहीं है बढ़िया से, इस डाल से इस डाल पर झूमता रहता है और ये काम किया जो ऑफिस में है तो ये बानर फिर चला जाएगा घर में, ऑफिस से घर, घर से दुकान, इधर उधर, फिर खाओ पियो स्त्री संवादी बसो के, और सुखदार वत्सल स्नेह किसके साथ है, पत्नी के साथ स्नेह है और बच्चा के साथ, बस बानर का अपनी पत्नी और बच्चा से बहुत स्नेह होता है। कोई दूसरा बानर यदि काट दिया उसके बच्चे को तो उसके लिए पूरा समाज जुटा करके झगड़ा करता है बानर, तो देखी गई है बात बेला या दीमा, लेकिन घर के रिश्ते में क्यों रहता है बानर बेला या दीमा, केवल स्त्री संग के लिए बेचारा बना हुआ और घर में पड़ा रहता है, बस घर में रहने का और कोई इसका उद्देश्य नहीं है, एक ही उद्देश्य है बेराय, बेराय का अर्थ होता है मैथुन, इसके लिए लचार है दीपस विश्वास हो बंधन, और फिर घर गृहस्थी के बंधन में पड़ा रहता है काम धंधा करने का, क्वचित प्रमादक गिर कंदरे पतन, और कभी रास्ता चलते चलते असावधानी से पर्वत के कंदरा में गिर जाता है, कंदरा में गिरने का मतलब है रेग से ग्रस्त हो जाता है, खान पान ठीक से नहीं रखा और असावधान हो गया तो गिर गया अस्पताल, यही एक कंदरा, अथवा कभी कोई डेल कर दिया चोरी वोरी कर दिया तो जेल भी एक कंदरा है, उसमें गिर गया दो चार महीना या दो चार दिन के लिए उस कंदरा में गिर गया, लेकिन अभी जीना रहता है इसके भाग में, इसीलिए गिरते गिरते किसी वृक्ष की डाली को पकड़ करके झूम जाता है, मतलब अस्पताल जाता है लेकिन अभी कर्म में लिखा है जीना, इसलिए दवा बीरो से बच जाता है। अच्छा बच भी गया तो चाहिए कि अब यहां हरे कृष्ण करे, यहां भी हरे कृष्ण ही करता है, झूम जाता है तब तक ऊपर से मधुर एक दो बूंद छूटी रहती है, तो उसको दो घंटे के बाद एक बूंद गिरे उसी को चाटता है, कहता ओह कितना सुख है, लेकिन भुजाएं में दर्द बढ़ रहा है, और ये भी जो कर्म फल है जीने का मरने वाला है, गिरने वाला है नीचे, और उसको कंदरा में सांप है वो डस लेगा उसे फंस जाता है, मतलब बूढ़ा है आदमी भी मरने की हालत में भी वो मधु के लिए तरसता है, थोड़ा स्त्री को देखने को मिल जाए उसका संग मिल जाए बस, तो इस समय भी तो महामंत्र जप हो, 50 के ऊपर वालों को एक दिन अनिवार्य कर देने चाहिए, वास्तव में तुमको सेवा वाला पूरा करना ही है, वास्तव में सरकारी आदेश होना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। कभी कभी गजभीत रास्ते, कभी कभी यह हाथी से भयभीत होता है, यह हाथी का अर्थ है मृत्यु, कभी कभी से भय लगता है कि हाय मर जाऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी मधु पीने की फिर भी रहता है, अतः कथनचित सदन प्रयापद है, अगर किसी तरह से दवाई हुई डॉक्टर मिला अच्छा अगर मुक्त भी हो गया तो ऐसा नहीं कि निकल कर फिर भजन करे फिर ऐसी बेलिक समुदाय में चलना चालू हो जाए, तो रोग बीत जाता है जेल से छूट आता है तो फिर वही काम जो पहले करता था। अब क्वचित प्रेमा अज्ञा निवेश में अज्ञा निवेश तो भजन जनों अध्यापन वेद कश्चन प्रमुख संघार कर रहे हैं, यह बैलिक समुदाय अजय माया द्वारा इस भवाटवे में भटकाया जा रहा है और आज तक कोई भी मतलब बिना गुरु आदि की सहायता के कोई भी न देगा, नहीं जानता है कि मैं माया में भटक रहा हूं मर रहा हूं, भगवान को नहीं जानता है, अद्वैत रहते देखिए बार बार लगा रहे हैं आज तक, तो रहू गोर तो मती कह रहे कि यहां जो है ये जो मैं बनियादी कथा कह रहा हूं दूसरा कोई नहीं है, तुम अपि तुम भी वही हो। जितनी घटनाओं का मैं वर्णन किया सब जगह तुम अपि लगाना पड़ेगा, तुम अपि तुम्हारे भी घर में भेड़े और सियार हो, तुम भी पर्वत की चढ़ाई करना चाहते हो, तुम भी गिरते हो अजगर के मुख में, ये अपि सब जगह लगाना पड़ेगा। और इसके साथ रहोगण के साथ साथ आप समस्त श्रोताओं से प्रार्थना है कि अपने अपने लिए इसको लागू कीजिए। रहोगण के स्थान पर प्रेम अपी अहम अपी सभी यही है वास्तव में, लेकिन वे लोग अब तो पार हो गए जो माला जप रहे हैं, जो भगवान का नाम जप रहे हैं तो पार हो गए, लेकिन जो नए जप रहे हैं तो तुम अपि यही तुम रहो गए संबोधन कर रहे हैं कि तुम अपि धनुष्य समस्त दंड कृतभूत में तो असज कात्मा हर्ष रहे सुन ज्ञान से महादाय तरह के प्रारंभ हे राजा रहोगा तुम भी और समस्त दंड हो जाओ और किसी को सताए मत, किसी को दुख मत दो, बल्कि सबका हित करो, सबसे प्रेम करो। कृतभूत मैत्र भूतों से जीवों से प्रेम करना सीखो, सबके हृदय में भगवान है, असज्जित आत्मा और मन को अनासक्त कर लो, आत्मा को असज्जित करो और हरि सेवा भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, इंद्रियों से भगवान का सेवन करो, श्रवण कीर्तन मनन निधि ध्यासन आदि, और इससे तुम्हारी समझ तुम्हारे ज्ञान की तलवार की धार तीखी हो जाएगी और तब इसे माया मोह काट करके भगवान के पास पहुंच जाओ। तरह अति पारम, अति पारम तरह, अति पारम इस भगतवे पुलिस पार चले जाओ, तुम से तरह फंसे हो। मैं सुंदर उपदेश है। तो इस तरह से जितने मैं व्याख्या की उसमें से व्याख्या नहीं की है जब भरत जी केवल ये सुहार आदि का है, लेकिन राजा रघुवर बहुत बड़े कुशल व्यक्ति थे, श्रद्धालु थे, विद्वान थे, समझ गए और समझ करके अब अपनी कर्तव्य का अपना निवेदन व्यक्त कर रहे हैं जय भरत जी के प्रति। बड़ा सुंदर यह श्लोक है पुण्य श्लोक, राजा रघुवर गदगद हो रहे तो रोने लगे थे चरण पकड़ करके, उनके आंखों से आंसू बहने लगा और कहते हैं राजा, सर्वस्व परोक्षवादस्य अर्थम व्याख्यानम विनिर् व्याकरण। राजगुरु इस परोक्षवाद का अर्थ बिना व्याख्यान के ही समझते। पहले उन्होंने कहा था कि मैं अपने संशय के विषय में पूछूंगा, लेकिन उनका संशय नष्ट हो गया, मैं समझ गया अपना कर्तव्य, सारा माया मोह भंग हो गया, भगवान में पूर्ण हो गया, तो वे कह रहे हैं अहो। सबसे पहले अहो का अर्थ आनंद से यह शब्द निकलेगा, अहो कितने आनंद की बात है, कितने हमारे जीवन में खुशी की बात है। अखिल जन्म से निर्जन्म से भले जितने भी जन्म हैं, जितने भी शरीर हैं, उन सब में सुंदर शरीर है निर्जन्म, मनुष्य का जन्म सबसे सुंदर। आज भी अनुभव कर रहा हूं, राजा रघुवर कह रहे हैं कि जितना भी शरीर है अखिल जन्म से बनो, अखिल जन्मों में मेरी जन्म अवश्य बनो, मनुष्य का जीवन ही सबसे अच्छा। तो इस पर मानो जब भरत जी कहें कि हम देवता आदि का शरीर क्यों हीन कह रहे हैं, तो कह रहे क्यों जन्म भ्रष्ट होकर अनुष्मी इस जगत में जिनसे बड़ा जन्म कुछ भी नहीं है, उन देवताओं का जन्म लेकर के भी क्या होगा, अपर जिसे कोई पर नहीं, अथवा दूसरा देवता आदि का जन्म लेने से भी क्या लाभ है,
जहां पर भगवान श्री कृष्ण के प्रेमों का भक्तों का प्रचुर समागम न मिले, स्वर्ग की पूर्ण कर रहे हैं। स्वर्ग में देवताओं को जो शरीर मिला है सब तरह से मनुष्य से श्रेष्ठ है। आयु बहुत लंबी होती है, ज्ञान बहुत अच्छा होता है, बल बहुत बड़ा होता है, और ऐसे ऐसे चीज खाते हैं कि पसीना कहीं नहीं निकलता है, थकावट कहीं नहीं होती है, केस कहीं नहीं पकते हैं, चलने में झूलियां नहीं पड़ती, तो वह शरीर अच्छा है ना। लेकिन वहां पर महात्माओं का प्रचुर संग नहीं है, भक्तों का संग नहीं। सब ऐसे महात्मा घूमते रहते हैं, जैसे मैं बोलिए सरकार दूंगा पर्वत में ये सब घूमते हैं, लेकिन देवताओं का मन भोजन में इतना अविष्ट रहता है कि बस दो चार मिनट संग के कोई ज्यादा संग नहीं करता। ये सात सात दिन बैठकर सत्संग करने का उन्हें अवसर नहीं है। तो जिन जिलों में आप जैसे ऋषिकेश के भक्तों का प्रचुर समागम नहीं है, उस जन्म से क्या लाभ? मतलब जीवन का सबसे बड़ा लाभ